सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, मुख्य विषय के अंतर्गत में आज आपसे, मेरे पास वक्त है, इत्मीनान के साथ सिविल सर्विस प्री 2023 की तैयारी के बारे में बात करूंगा। प्री नहीं बल्कि सिविल सर्विस 2023 की तैयारी के बारे में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले जो एक दो छोटी छोटी घटनाएं हैं, खबरें हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। मैंने आप सबसे कहा है कि जो अग्निवीर नाम का जो टॉपिक है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसे इत्मीनान के साथ पढ़ें, देखें, समझें। और कल मैंने आप सबको एक होमवर्क भी दिया था, मुझे नहीं मालूम कि आपने उस होमवर्क के साथ कितना न्याय किया है। देखिए, उस होमवर्क के साथ न्याय करना नहीं है, इनफैक्ट आप उसके साथ न्याय और अन्याय करके अपने साथ ही न्याय या अन्याय करेंगे। ये बात भले ही आपके आज समझ में ना आ रही हो, आगे समझ में आ जाएगी, लेकिन समझ में तो आएगी ही। अग्निवीर में जो एक एड ऑन हुआ है वो ये, अग्निवीर की जो भर्ती होनी है, अग्निपथ जो योजना है, वो ये है कि जो अधिकतम आयु थी जो 21 वर्ष की थी, अभी उसे बढ़ा करके 23 वर्ष कर दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे किस प्रकार से जो अलग अलग संस्थान हैं, जो राज्य हैं, वो इनके लिए अलग अलग प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। कुछ राज्य कह रहे हैं कि नहीं, जब ये वहाँ से 4 साल के बाद वापस आ जाएंगे तो हम अपने पुलिस बल में उन्हें प्राथमिकता देंगे। कुछ उनके लिए एजुकेशन सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, इस तरह की घोषणाएँ की जा रही हैं। और दूसरी ओर आपने यह भी न्यूज़ में सुना होगा कि कुछ स्थानों पर इसका विरोध भी होना शुरू हो गया है, और विरोध इस रूप में कि ये जब वापस आ जाएंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा। तो देखिए, एक नई योजना है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्रांतिकारी किस्म की योजना है, तो इस तरह की बहस तो होती ही है और मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन से फिर जो चीज़ें निकलेंगी वो ज़्यादा टिकाऊ होंगी और ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। क्योंकि देखिए, अग्निपथ का जो संबंध है वो सामान्य नौकरी से तो है नहीं, इसका संबंध हमारी सेना से है, राष्ट्र की सुरक्षा से है। तो डेफिनेटली इस पर पूरी तरह से मंथन होना ही चाहिए और उसका दौर अभी जारी है, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें। दोस्तों, आज एक खबर अखबारों में है और वो खासकर फेड रिजर्व को लेकर है। फेड रिजर्व, फेडरल बैंक जो अमेरिका का है, उसने अपने ब्याज की जो दरें हैं वो बढ़ा दी हैं। और जैसे ही उसने ब्याज की दरें बढ़ाई, आप देखिए दुनिया के शेयर मार्केट में किस तरीके से गिरावट आ गई, जिसमें भारत भी शामिल है। अब सवाल ये है कि ये घटना क्या आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है? मैं आपको अभी जो पेपर 5 जून को जो मिला है प्री का, उसके सेट सी, उसका जो सेट सी है वो मेरे पास है। और यदि आप मेरे साथ सहजता के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जो प्री एग्जामिनेशन का पेपर है, यदि आप सेट सी अपने पास रख लेंगे तो आप तुरंत लोकेट कर पाएंगे। जैसे सेट सी का जो मैं अभी प्रश्न बताने जा रहा हूं, वो 31 क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 क्वेश्चन नंबर को मैं पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा है, उसका इंग्लिश है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, है ना। इसके बाद दो और स्टेटमेंट हैं, है ना, इसके बाद कौन कौन से सही हैं वो दिया हुआ है, आप उसे डिटेल में देख लेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। अब कल जो यूएस फेड रिजर्व ने जो भी घोषणा की है, फेडरल बैंक ने, आप बताइए कि क्या उसका इससे संबंध है? सोचना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको अब तैयारी करनी है और सही तैयारी करनी है, आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करना है, तो थोड़ा सा तो अपने को ढालना पड़ेगा। आप अपनी सुविधा के हिसाब से तैयारी नहीं कर सकते, आपको यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, अगर आप ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं तो। अदरवाइज टाइम पास के लिए तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, सख्त मुद्रा नीति, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, तो पहले तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। क्या आप इसको, जो हमारे यहाँ की जो मौद्रिक नीति, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी घोषित करता है, क्या आप उससे जोड़कर देख सकते हैं? मैं आपके दिमाग को मथना चाह रहा हूं। आपने देखा है कि पिछले दो बार से, एक बार तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीच में ही रेट बढ़ा दिए थे, ब्याज दर बढ़ा दी मोटे तौर पर कहें तो, और फिर अभी जब मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ने घोषित की, कुछ ही दिनों पहले की तो बात है, उसमें फिर से उन्होंने ब्याज दर बढ़ा दी, याद है आपको? तो जब ब्याज दर बढ़ाई जा रही है तो इसे ही हम कहते हैं सख्त मौद्रिक नीति। मतलब ब्याज दर आप बढ़ा रहे हैं, मतलब हार्ड स्टेप ले रहे हैं, और अगर ब्याज दर लगातार घटाते चले जा रहे हैं तो ये लिबरल पॉलिसी हो गई, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा कर्ज लें, ज्यादा से ज्यादा कर्ज लें। लेकिन जब आप टाइट पॉलिसी लेकर के आते हैं तो इसका मतलब है कि आप नहीं चाह रहे हैं कि लोग बैंकों से ज्यादा धन उधार लें, क्योंकि ब्याज की दर आपने बढ़ा दी है, तो टाइट पॉलिसी हो गई। एक समानता आप और याद करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अभी ब्याज की दर और बढ़ाई है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था, तो आपका उत्तर होगा कि उसका उद्देश्य था कि जो महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है अमेरिका में, उस पर नियंत्रण पाया जाए। यानी कि जब आप ब्याज की दरें बढ़ा देते हैं तो महंगाई के कम होने की संभावना बन जाती है, यही हुआ था। अभी जब अमेरिका कर रहा है तो अमेरिका भी यही कर रहा है, उसने भी फेड रिजर्व में जो ब्याज की दरें बढ़ाई हैं महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए, भारत ने भी महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए, दोनों में समानता आपको दिखाई दे रही है। अर्थशास्त्र के जहां सिद्धांत लागू होंगे तो पूरी दुनिया में एक जैसे ही लागू होंगे ना, क्योंकि सिद्धांत तो एक प्रकार से साइंस है, तो वहां जो है वो यहां भी है। तो होता क्या है कि सीधे सीधे, अब आप देखिए कि इस पर प्रश्न न पूछ करके, मॉनेटरी पॉलिसी पर सीधे सीधे प्रश्न न करके उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और अगर आप इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस सिस्टम को समझ लेते हैं, मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल सिस्टम को समझ लेते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाता। एक बात मैंने कही कि जैसे ही फेड रिजर्व ने ब्याज की दरें बढ़ाई, दुनिया के शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गए, है ना, शेयर मार्केट में गिरावट आ गई। शेयर मार्केट में गिरावट आने का क्या कारण है? कारण यही होता है कि लोगों को अब यह लग रहा है कि भाई ये जो कंपनियां हैं, जो काम कर रहे हैं, जो उद्योग हैं, अब इनकी कमाई कम हो जाएगी। अब इनकी कमाई कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि शेयर के रेट कैसे बढ़ेंगे? शेयर के रेट तो तभी बढ़ेंगे ना जब कंपनियां कमाएंगी, तो ये उद्योग की कमाई कम हो जाएगी तो शेयर के रेट गिर गए। शेयर की रेट का इससे क्या क्या संबंध हो गया, कमाई से क्या संबंध हो गया, बैंक के ब्याज दर से, तो आप सोच करके देखिए। अब न तो आप उद्योग के लिए, नए उद्योग लगाने के लिए बैंक के पास जाएंगे, क्योंकि ब्याज दर बढ़ गई है तो आपको वो लग रहा है कि ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा तो हमारी कमाई नहीं हो पाएगी, और न आप और हम जैसे लोग बैंक के पास जाएंगे कि भैया मुझे बाइक लेनी है तो आप दे दीजिए, मुझे मकान खरीदना है तो आप लोन दे दीजिए, क्योंकि मुझे ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। आपको नहीं लग रहा है कि इससे बाजार में वस्तुओं की डिमांड कम हो जाएगी? और जब बाजार में वस्तुओं की डिमांड कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि उद्योगों की सेल कम हो जाएगी, बिक्री कम हो जाएगी, और जब उद्योगों की बिक्री कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि उनकी कमाई कम हो जाएगी, और जब उद्योगों की कमाई कम हो जाएगी तो शेयर के रेट बढ़ेंगे कैसे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है और बहुत ही प्रैक्टिकल बात है और सरल भी। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई बहुत कठिन सिद्धांत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा इत्मीनान के साथ आपको धीरे धीरे घटनाओं, सिद्धांतों को समझते हुए तैयारी करनी पड़ेगी, और ये अभी की बात नहीं है, कुछ साल पीछे से ये चीज, ये प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, अब वो थोड़ा सा ठोस रूप लेने लगी है। तो फेड रिजर्व के बारे में बस इतना ही। आइए, जो आज का मुख्य विषय है अब उस पर थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। दोस्तों, पेपर आपने अब अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, मैंने भी पढ़ लिया है, और मुझे जो आप सबसे बातें करनी हैं उस पर मैंने अपना एक प्लान भी तैयार कर लिया है। आज जो मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जो पिछले कई सालों के बाद पहली बार मुझे जो दिखाई दे रही, हो सकता है कि आपको ये मालूम भी हो कि मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए चार सब्जेक्ट को उसके स्तंभ मानता हूं, फोर पिलर्स। और वो कौन से फोर पिलर्स हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। अगर मैं पिछले लगभग 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखूं प्री के, तो मैं एक दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि कोई भी साल ऐसा नहीं रहा है कि इन चार सब्जेक्ट से टोटल 60% क्वेश्चन ना आए हों। मोर देन 60% आ सकते हैं, लेकिन 60% से कम प्रश्न इन चार विषयों से नहीं पूछे गए। इस बार जो अभी दिखाई दे रहे हैं उसमें इनकी संख्या घट गई है, 50 के आसपास हो गई है, 50%, यानी कि जो 50% है वो इन चार विषयों पर पूछे गए हैं, और जो रिमेनिंग 50% है उसमें फिर जो दूसरे जो हिस्से हो जाते हैं जिसमें आपका जनरल साइंस है, एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, इन सब पर क्वेश्चंस हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे दिखाई देता है। मैं इस बात पर नहीं जा रहा हूं कि यह परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सही है या गलत है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन यह एक परिवर्तन है जो आपकी पकड़ में रहना चाहिए। मैं इसे एक तरह से तटस्थ भाव से ही देखता हूं। तटस्थ भाव से देखने का मतलब यह है कि ठीक है, 60 पूछ लिए जाते तो कौन सी बड़ी बात हो जाती, और 50 पूछ लिए गए हैं तो कौन सी बहुत मुश्किल का काम हो गया है। क्योंकि अगर जब आप यहां से प्रश्न घटाते हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति तो आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 100 होने ही हैं। तो एक जो दूसरा चरित्र आपको दिखाई देगा इस बार के क्वेश्चन पेपर में वो ये है कि करेंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बहुत बढ़ा दिए गए हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, और खासकर करेंट अफेयर्स से क्वेश्चंस की संख्या का बढ़ जाना मैं एक बहुत ही अच्छे लक्षण के रूप में मानता हूं। उसका कारण यह है कि जैसे मान लीजिए कि चलिए हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते सपोज, और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने ऑप्शनल भी हिस्ट्री लिया हुआ है, तो अब उसको तो फायदा मिल गया, अतिरिक्त फायदा मिल गया आपकी तुलना में, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर करेंट अफेयर्स में क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है तो सीधी सी बात है कि वहां सेम प्लेइंग फील्ड होगा, उसमें किसी को फायदा और किसी को नुकसान नहीं होगा। इसीलिए कम से कम मैं अगर करंट अफेयर्स की संख्या ये यही रखते हैं जो अभी है या आगे और भी बढ़ा देते हैं तो उसका हृदय खोलकर स्वागत करूंगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं एक छोटी सी बात, वो ये है कि करंट अफेयर्स का रोल अब बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और चूंकि ये शुरुआत हुई है, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं आए, तो ये कुछ साल तक कंटिन्यू करने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ऐसी स्थिति में जो न्यूज़पेपर हैं, जो न्यूज़ हैं, डेली ऑडियो लेक्चर्स जैसे जो माध्यम हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं में से एक मित्र का नाम है दिनेश ढुल, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।